इतनी रोशनियों की बात हुई तो अब एक अंधेरे की बात है, कुफर का अंधेरा। वल्लज़ीना कफरू आमालुहुम कसराब। इस आयत को आप फील कीजिएगा कि समंदर के अंदर कितने अंधेरे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुफर को यहाँ अंधेरों से तशबीह दी, और काफिरों के आमाल मिसल इस चमकती हुई रेत के हैं जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है लेकिन जब इसके पास पहुंचता है तो इसे कुछ भी नहीं पाता। हाँ, अल्लाह को अपने पास पाता है जो इसका हिसाब पूरा पूरा चुका देता है। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब कर देने वाला है। यह मिसल इन अंधेरों के जो नहायत गहरे समंदर की तह में हो, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हो। अलगरज अंधेरियां हैं जो ऊपर तले पे दर पे हैं, जब अपना हाथ निकाले इसे भी करीब है कि ना देख सके। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर ना दे, इसके पास कोई रोशनी नहीं। ये थी आयत नंबर 39 से 40, 39 से 40। इसका उन्वान लिखिए अंधेरों पे अंधेरे, स्लैश डालेंगे कुफर पे ख्वाहिशात के अंधेरे। काफिर भी बुरा होता है लेकिन ख्वाहिश परस्त काफिर जो है वो और ही बुरा होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ अंधेरों से इसको क्यों साबित किया? क्योंकि जो लोग अल्लाह की हिदायत की रोशनी से अपने आप को दूर करते हैं, फिर ऐसे लोगों की जिंदगी अंधेरों में। और देखा जाए तो आज आपको अक्सर लोग ऐसे ही अंधेरों के अंदर भटकते हुए महसूस होंगे, और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला दावत देते हैं कि वो अल्लाह के कलाम के नूर में और उस रोशनी के अंदर अपने आप को जब ले आएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, कि अल्लाह ताला उसके लिए मजीद और बेहतरीन रास्ते बनाएगा उस रोशनी के। और आप देखिए कि इसी को डिप्रेशन का अंधेरा कह लें, इसी को फ्रस्ट्रेशन का अंधेरा कह लें। और आज वो चेहरे जो दूर से हमें बड़े गोरे लगते हैं, बड़े चमकते हुए लगते हैं, ऐसे दिल अंदर से अंधेरों में। आप किसी ऐसे शख्स से जो अल्लाह से दूर है उसके करीब बैठ के देखें, आपको आहें भरता हुआ दिखेगा, परेशान दिखेगा। क्यों? कि जब अल्लाह के कलाम की और अल्लाह की हिदायत की रोशनी जिंदगी में नहीं रहती तो फिर इंसान एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में जाने लगता है। अलम तरअन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। क्या आपने नहीं देखा कि आसमानों और जमीन की कुल मखलूक और पर फैलाए सारे उड़ने वाले परिंदे अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं? हर एक की नमाज और तस्बीह उसको मालूम है। लोग जो कुछ करें इसे अल्लाह खूब वाकिफ है। आसमान जमीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। टॉपिक लिख लें इन आयतों का। आयत सिंपल है, आयत नंबर 41 से 42। इसको अनवान लिखिए परिंदे सफ़े बांधे हुए हैं और हमारी सफ़े कैसी हैं। आगे चलते हैं। अलम तरन अल्लाह युसजी सहाबा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर इनको मिलाता है, फिर इन्हें तह बतह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि इनके दरमियान में से मीं बरसता है, वही आसमान की जानब से ओलों के पहाड़ों में से ओले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे इनके पास बरसाए और जिनसे चाहे इनसे हटा दे। बादल ही से निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी होती है कि गोया आंखों की रोशनी ले चली। अल्लाह ही रात और दिन को रद्दो बदल करता रहता है। आंखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी इबरतें हैं। तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ही ने पानी से पैदा किया। इनमें से बास तो अपने पेट के बल चलते हैं, बास दो पाँव पर चलते हैं, बास चार पाँव पर चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये थी आयत नंबर 43 से 45, 45 से 46। इन आयतों का उन्वान लिखिए अल्लाह का नूर मुख्तलिफ चीजों से झलकता है। ये जितनी चीजें इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ना, अब मौका नहीं है मैं आपको एक एक हाईलाइट करवाऊं। असल में ये सारी चीजें उसी आयते नूर की तरफ चल रही हैं जिसका तस्करा पीछे था। यहाँ देखिए कि तीन चार किस्म की चाल का जिक्र किया, कुछ पेट पे चलते हैं, कुछ दो पाँव पे चलते हैं और कुछ चार पे चलते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा मौका दिया कि उस पर ये चारों ही कैफियत आती है। बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में पेट पे रेंगता है, क्रॉल करता है, फिर उसके बाद हाथ भी नीचे रख के पाँव भी रख के चारों पे चलता है, और जब बड़ा होता है तो दो पे चलने लगता है ना। लकी शान कैसे उसने एक इंसान को मुख्तलिफ किस्म की बातें दे दी। और हर चीज में इंसान के लिए नसीहत है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कितनी खूबसूरत चीजें पेश कर दी। लकद अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, बेशक हमने रोशन और वाज़ेह आयतें उतारी हैं। अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखा दे। और कहते हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और फरमा बरदार हुए, फिर इनमें से एक फिरका इसके बाद फिर जाता है, ईमान वाले नहीं। जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल इनके झगड़े चुका दे, तो भी इनकी एक जमात मुंह मोड़ने वाली बन जाती है। हाँ, अगर इन्हीं को हक पहुँचता हो तो मती और फरमा बरदार होकर इसकी तरफ चले आते हैं। अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या इनके दिलों में बीमारी है, या ये शक्को शुबा में पड़े हुए हैं, या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और इसका रसूल इसकी हक तलफी न करें। बात ये है कि यही लोग बड़े जालिम हैं। इनके बरक्स इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन। इन आयतों को सुनते वक्त अपने आप को मुहासबे के लिए हम तैयार रखेंगे, खुद मुहासबा करेंगे अपना, क्या इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन। ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल इनमें फैसला कर दे, तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो भी अल्लाह ताला की और उसके रसूल की फरमा बरदारी करें, खौफ इलाही रखें और इसके अजाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। जी, ये थी आयत नंबर 46 से 52, 46 से 52। इसका उनवान हम लिखेंगे, दो तरह के लोग, दो तरह के रवैये। मोमिनों और मुनाफिकों का तकाबुल पेश किया गया। हम सब के लिए अपना मुहासबा करना काफ़ी है, किसी दूसरे के बारे में सोचने की बजाय कि हमारा अमल क्या होता है। जब हमें किसी काम की दावत दी जाती है तो क्या कहते हैं? आयत नंबर 51 को हाईलाइट कर लीजिए, समेना व अताना। हमने सुना और माना। क्या हमारा मिजाज ये है या वो है जिसका तذکرہ पीछे यहूद के तनाजुर में गुजर चुका कि समेना व असैना। ये सूरत हमारे सामने कितने अहकामात को ला रही है। अल्लाह बार बार इनको रोशन आयतें कह रहा है, लेकिन अगर हम इनको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे तो फिर हमारा तذکرہ ऐसे लोगों से हट के उन लोगों में चला जाएगा जो लोग बातों को सुन के नहीं मानते। हर इंसान अपने ऊपर ले के सोचे, अपने बच्चों से क्या चाहते हैं हम कहें और वो मानने लगे, अपने एम्प्लॉयज से क्या चाहते हैं हम जो कहें वो मानने लगे। ये छोटी छोटी मिसालें हैं, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। अल्लाह की बात जब हम नहीं मानते तो वो क्या सोचता होगा? आप अपने बच्चे को कहना कि उठो पानी देना और वो अपनी जगह से उठे ना, टस से मस ना हो, क्या महसूस होगा? पहले तो आपको शर्म आएगी, एम्बेरसमेंट होगी, आपको फील होगा किसने मेरी बात नहीं मानी। प्यास तो भूल जाएगी, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा एग्रेशन आएगा कि जिसकी वजह से आपको और गुस्सा आएगा। बस इसी बात को सोच लें कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है और उसको मैं नहीं मानती तो फिर अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मुकाम रहता होगा। अब आगे कुछ मुनाफिकाना रवैयों का तस्करा। वक्समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए बस कस्में न खाओ, तुम्हारी इताअत की हकीकत हमको मालूम है, जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। कह दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल अल्लाह की इताअत करो, फिर भी अगर तुमने रूगरदानी की तो अल्लाह के रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वही है जो इस पर लाजिम कर दिया गया और तुम पर इसकी जवाबदेही है जो तुम पर रखा गया। हिदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल की मातहती करो। सुनो, रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ तौर पर पहुंचा देना है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात, तुम में से इन लोगों से जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह ताला वादा फरमा चुका है कि इन्हें जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा, जैसे कि इन लोगों को खलीफा बनाया था जो इनसे पहले थे। यकीनन इनके लिए इनके इस दीन को मजबूती के साथ मुहकम करके जमा देगा जिसे वो इनके लिए पसंद फरमा चुका है, और इनके इस खौफ और खतरे को अमन और अमान में बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराएंगे। इसके बाद भी जो लोग नाशुक्री और कुफर करें वो यकीनन फासिक हैं। करो क्या इस गलबे को पाने के लिए? इसका जवाब दिया गया, वाकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज की पाबंदी करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला के रसूल की फरमा बरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ख्याल आप कभी न करना कि मुनकर लोग जमीन में इधर उधर भागकर हमें हरा देने वाले हैं। इनका असली ठिकाना तो जहन्नुम है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये थी आयत नंबर 53 से 57, 53 से 57। इन आयतों का टॉपिक है, बातों से खुश करने की बजाय अमल करके दिखाओ। बास लोग काम करते हैं और बास लोग दावे करते हैं। किसी के दावे की दलील उसके अमल से साबित होती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अगर इंसान छोटे छोटे काम करना शुरू हो जाए तो एक वक्त आता है कि वो अपना मुकाम बना लेता है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके अमल के वक्त पीछे हट जाना जो है ये इंसान का मुकाम गिराता है। इन आयात में से एक आयत अब हाईलाइट करेंगे, आयत नंबर 55 का इब्तदाई हिस्सा। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाती लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज, ये वाला हिस्सा। अल्लाह का वादा है किन से? ईमान वालों से। क्या कि अल्लाह इनको गालिब करेगा? क्या आज लग रहा है कि अल्लाह का ये वादा पूरा हो रहा है? मुसलमान ईमान वाले गालिब लगते हैं? देखिए, दलील की बुनियाद पे इस्लाम और मोमिन हमेशा गालिब है, लेकिन अमली तौर पे देखे तो दुनिया में आज मुसलमान गालिब नहीं दिखते। उसकी वजह क्या है? आयत नंबर 56 वाली बातें नहीं हो रही। अकीम उस्सलात, आतु ज़का, वातीउ रसूल। हमारे लिए इस हिस्से के अंदर से अमल की बात क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में भी अल्लाह हमको गालिब करे, इंसान होने के नाते, गिरोह होने के नाते या कौम होने के नाते, तो हमें अल्लाह के हुक्मों को मानना पड़ेगा। एक मोमिन अगर इस बात को अपनी ज़िंदगी में जगह दे लेना, क्या कि मैंने अपने रब की हर बात माननी है, तो यकीन करें अल्लाह भी उसकी हर बात मानने पे आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं कि लोगों में उनका कोई मुकाम नहीं होता। किसी से रिश्ता मांगे तो लोग रिश्ता ना दें, कोई दावत करें तो उनको ना बुलाएं, ये किसी की दावत करें तो लोग इनकी दावत में ना जाएं, यानी बिल्कुल आखिरी लोग होते हैं, डिग्रेडेड किस्म के लोग। लेकिन अल्लाह की निगाहों में उनका क्या मुकाम होता है कि अगर वो अल्लाह के नाम पे कसम भी खा दें तो अल्लाह उनकी कसम सच कर देता है। और ये कब होता है? अल्लाह की बात मानने से। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में कर दे। अब बीच में आप देखिए कि ऐसी बातें करने के बाद जिससे दिल की इस्लाह की बात हो, अपने अमल को चेक किया जाए, अपने आप का मुहासबा किया जाए, अब दोबारा फिर माशरती अहकाम आता है जिसका सूरत के आगाज में तस्करा था। अल्लाह ताला एक मुसलमान को एक मुहज्जब मुसलमान बनाते हुए दोबारा घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के कुछ मजीद अहकाम देते हैं। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कितनी प्यारी पुकार है ना ये, इसको अपने दिल पे लिया करें। और हर पुकार पे आप आयत पे कहा करें, जी अल्लाह, आपने मुझे बोला जी अल्लाह, आप करेंगे ना, आपका दिल दिमाग सब हाजिर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ए ईमान वालो, तुम पर तुम्हारी मलकियत के गुलाम हो, और इन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे हो, अपने आने की 3 वक्तों में इजाजत हासिल कर लेनी जरूरी है, नमाज फजर से पहले और जोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो, और ईशा की नमाज के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारी खलवत यानी तन्हाई के और पर्दे के हैं। इन वक्तों के माँ सिवा न तुम पर कोई गुनाह है और न इन पर। तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। अल्लाह ताला इस तरह खोल खोल कर अपने अहकाम तुमसे बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। और तुम्हारे बच्चे भी जब बलूगत को पहुंच जाए तो जिस तरह इनके अगले लोग इजाजत मांगते हैं, इन्हें भी इजाजत मांग कर आना चाहिए। अल्लाह ताला तुमसे इसी तरह अपनी आयतें बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ही इल्म और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 58 से 59। इसका उनवान लिखिएगा, इस्लाम तहजीब का दीन है, इस्लाम तुमको सिविलाइज्ड बनाना चाहता है। आयत वाजे है। अल्लाह ताला इंसान की किस तरह रियायत करते हैं कि घर में रहते हुए भी छोटे बच्चे जो आपके अपने बच्चे हैं उनको माँ बाप के पास आने और जाने के कुछ कवायद देता है। क्यों? क्या ये जुल्म है? छोटे छोटे मासूमों पे पाबंदी है? यहाँ एक जुमला लिख लें जो इन सारी आयतों से आपको एक फीलिंग भी आ रही होगी, और वो क्या है कि इस्लाम ये चाहता है कि रिश्तों का तकद्दस पामाल ना हो। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप रोल मॉडल होते हैं, वो उनको हीरो समझता है। एक मासूम बच्चा जब माँ बाप को किसी ऐसी हालत में देख ले कि जो उसके ख्याल में एक मायूब हालत है, तो उसके दिल में माँ बाप का वो मुकाम नहीं रहता। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि जवान होने के बाद ये तकद्दुस पैदा हो। पहले दिन से छोटे बच्चे को पाबंद कर दिया और शोहर और बीवी को यहाँ यानी इनडायरेक्टली बता दिया कि तुम्हारा घर में रहना सहना, आपस में एक दूसरे से बातचीत, तौर तरीके इस हद तक न खुल जाएं कि मासूम बच्चे भी तुम्हें देखने लगे। अफसोस की बात है कि जब हम बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं तो बाज दफा वही हरकतें जो एक इंसान किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकता, अपने बच्चों के सामने करने लगते हैं। यकीन करें, यानी अल्लाह ताला माफ करे, मेरी दोस्तों में से एक हैं और किसी डे केयर में या किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, कहती हैं कि बच्चे गलत हरकतें करते देखे गए और कहने लगे कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई सॉ माय फादर विद मदर। वो कोई छोटा अमल भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। क्या वो बच्चा अपनी माँ की इज्जत करेगा? अल्लाह के नबी की एक हदीस मुझे बड़ी ही कसरत से याद आती है, और एक मौके पे तो बहुत ही आई जब मैं किसी जगह सी वर्ड देखने चली गई थी कि ये नेचुरल वर्ड होगी, लेकिन वहां मैंने लोगों को जो नीम नेकेड देखा या नीम बरहना देखा कि माँ भी नंगी है और बच्चा भी नंगा है, और माँ भी जवान है और बच्चा भी जवान है। उस दिन मुझे वो हदीस बड़ी समझ आई कि आपने फरमाया कि क्यामत के करीब मुहर्रमात में जिना होगा, यानी वो रिश्ते के जहाँ तकद्दस कायम है। और आप देखिए जो माँ इतनी अपने आप को पेश कर रही है कि उसका जवान बेटा उसको नहीं देख रहा होगा। कभी आप सोचा करें, बस दफा आज़ादी के नाम पर इंसान ऐसे काम करता है। तो एक जुमला याद रखिए कि जब आपका बच्चा हो जाए ना, तो आप समझ लें कि अब आपकी आज़ादी के दिन गए। ये मासूम आंखें आपको देख रही होती हैं, बात अब बचपन की बातें याद रहती हैं। कहीं तो जहालत की वजह से ये गुनाह होते हैं देहातों में, और कहीं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। तो अल्लाह ताला हमें मुहज्जब बना दे, सिविलाइज बना दे। वल कवायदु मिनन निसा, बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश न रही हो, वो अगर अपने बाहर के कपड़े उतार रखें तो इन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालियां न हो। ताहम अगर इनसे भी इख्तियात करें तो बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। पर अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर मुतलिकन कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों में से, या अपनी माओं के घरों में से, और अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या इन घरों से जिनकी चाबियों के तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब मिलकर साथ बैठकर खाओ या अलग अलग खाओ। बस तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीजा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। ये थी आयत नंबर 60 से 61, 60 से 61। इसका उन्वान लिखिएगा, मुझे तो इतनी मोहब्बत आ रही है ना ये खाने पीने की बातों को पढ़ के, कि अल्लाह की ज़ात कितना प्यार करती है। कहते हैं ना, रिश्तेदार रिश्तेदारी है, एक बात सुनी होगी आपने। अल्लाह ने रिश्तों को कितनी अहमियत दी, फूफियों का जिक्र, खालाओं का जिक्र, पता नहीं आपको अपने याद आ रहे थे कि नहीं, कितना इंसान का दिल खोल दिया कि तुम इनके घरों से खा सकते हो, और हम तकल्लुफ करते रहते हैं। भूख भी होती है, नहीं अभी नहीं, दिल से सोच के जाते हैं क्या खाएंगे, और वहां जाके कहते हैं भूख ही नहीं है, फिर कहते हैं कुछ पूछ ही नहीं रहे, दोबारा पूछे ही नहीं, छूटे तकल्लुफ आता है ना। इस्लाम कितना प्यारा दीन है, अल्लाह अकबर। यकीन करें, दिल की गहराई से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम ही दीनन। अल्लाह तूने इतना प्यारा दीन दिया जो हमारी इज्जत की हिफाजत करता, जो हमारे पेट की हिफाजत करता, जो हमारी निगाहों की हिफाजत करता। अल्लाह ताला इतने प्यारे अहकामात दे रहा है, उन टॉपिक लिख लीजिए इन आयतों का। इस्लाम एक आज़ाद मजहब है, सच है? हम क्या सोचते हैं आज़ादी कहते हैं इस्लाम से हट के होना, इससे ज्यादा आज़ादी आपको कौन देगा? क्या आप इस तरीके से अपने आप को आज़ाद समझें कि सबके साथ आप अपने आप को उस तरह फील करें जहां आपको होना चाहिए था? और यहाँ एक आयत हाईलाइट करवा के बस आगे चले ही जाऊंगी, आप उस पे बाद में खुद ही गौर कर लीजिएगा। आयत नंबर 60 को, वल कवायदु मिन निसा इल्लाती। इस पे एक वाक्या है, एक सहाबी थे, उन्होंने एक बड़ी उम्र की औरत को, बहुत बूढ़ी थी, बहुत मोटे चादरों बुरकों और जो भी कोई उस वक्त का रिवाज होगा उसमें लिपटे हुए देखा, तो उनको कहने लगे, अम्मा क्या तुमने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ी कि वल कवायदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहन, कि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों को इजाजत दे दी कि वो अगर अपने मोटे कपड़े जो हैं उतारना चाहें, यानी बाहर से निकलते हुए सीधे साधे जिस कपड़े में थी उसी में चली जाएं, तो कोई हरज की बात नहीं, फिर भी आप इतने भारी कपड़ों में लिपटी हुई हैं। तो वो अम्मा बड़ी पढ़ी लिखी थी, कहने लगी, आपने ये बात तो पढ़ी है लेकिन क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि वाई यस्ताफिफ़ना खैरुल्लहुन, हाँ अगर वो इससे भी बचना चाहें तो ये उनके लिए अच्छा है। तो बस ये आयत भी बहुत बड़ी दलील है इस बात के कि बुढ़ापे में वही कपड़ा हल्का होता है जो जवानी में पहना जाता है, और जो जवानी में हल्के कर लें अपने और सिर्फ अपने आप को पर्दे की पाबंदियों से आज़ाद करने के लिए अपने आप को बूढ़ा करार दे दें, तो फिर उनको तो फिर अल्लाह ताला ही हिदायत देगा और हम सबको भी। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, बा ईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाजत ना लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौके पर आपसे इजाजत ले लेते हैं, हकीकत में यही है जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। बस जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम की इजाजत तलब करें, आप इनमें से जिसे चाहे इजाजत दे दें और इनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगे, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तुम अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा बुलाना न समझो कि जैसा कि आपस में एक दूसरे को होता है, तुम में से इन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से खिसक जाते हैं। सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं उनको डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना पड़े या इनको दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द, आगाह हो जाओ कि मानो जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला ही का है, जिस रविश पर तुम हो वो इसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब इसकी तरफ लौटाए जाएंगे उस दिन इनको इनके किए से वो खबरदार कर देगा, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 62 से 64। इसका उन्वान लिखिए, मीटिंग्स के आदाब। ये लफ्ज मैंने जान के बोला, इज्तमाई कामों के करने के लिए जब लोग एक जगह जमा होते हैं ना, उसके मैनर्स हैं इन आयतों में। एक दूसरा टॉपिक भी लिख लीजिए कि रसूल का मुकाम दूसरों से बुलंद है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन बातों पे अमल करने की। इस सूरत में जितनी बातें हमने पढ़ी इनको अपनी ज़िंदगी में ला के अपनी ज़िंदगी को रोशनियों वाली ज़िंदगी कर लें। पिछली सूरत नूर थी तो अगली सूरत फुरकान है, दोनों का रब देख लीजिए। पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुर्क़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। इसी अल्लाह की सल्तनत है आसमानों और जमीन की, और वो कोई औलाद नहीं रखता, ना उसकी सल्तनत में कोई इसका साझी है, और हर चीज को इसने पैदा करके एक मुनासिब अंदाजा ठहरा दिया। इन लोगों ने अल्लाह के सिवा जिन्हें अपने माबूद ठहरा रखे हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। ये तो अपनी जान के नुकसान और नफे का इख्तियार भी नहीं रखते, और न मौत व हयात के, और न दोबारा जी उठने के वो मालिक हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 3, 1, 2, 3। इसका उनवान लिखिए हक और बातिल के दरमियान हद्दे फासिल कुरान है। अभी इसको आसान करके भी बोलती हूँ दोबारा। कुरान हक और बातिल में फ़र्क करता है। हम में से कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, और ख़ास तौर पे ये परेशानी तब होती है जब हमारा अल्लाह की किताब के साथ इल्मी ताल्लुक़ नहीं होता। और वो फ़र्क क्या होता है, जिससे पूछो वो कुछ और ही बताता है। हर एक तो बस मुख्तलिफ बात बताता है। एक से पूछो उसने ये कहा, दूसरे से पूछा उसने ये कहा, समझ नहीं आती क्या करें, ये मसला है। जितने मुंह उतनी बातें। अल्लाह ताला यहाँ उस मसले का हल बता रहे हैं, और वो क्या है कि इस फुरकान के साथ अपने आप को जोड़ लो। तुम क्यों दूसरों पे रहते हो, तुम खुद पढ़ लो। एक दफ़ा कुरान पाक के साथ जब एक बंदे का ताल्लुक जुड़ जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल को हक और बातिल का पैमाना बना देते हैं। फिर उसको खुद ही पता लगता है कि ये ठीक है कि ये गलत है। फिर बहुत ज्यादा दूसरों से पूछना और उसके ऊपर डिपेंड करना, इसकी इंसान को जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की इस किताब के साथ एक ऐसा ताल्लुक जुड़ जाए कि हम अल्लाह की मर्जी को समझने लगे। अल्लाह के नबी किसी बच्चे की जब जुबान खुलती थी तो शुरू में ये आयात पढ़वाया करते थे, तौहीद की आयतें। बहुत ही प्यारा इसका मफहूम है। अल्लाह की शान जब एक बच्चे की जुबान से शुरू में ही अदा हो जाएगी उसकी जुबान से, तो बाद में आप देखें कि फिर उसका असर उसकी जिंदगी में भी आएगा। अब इसके बाद चूंकि ये सूरत मक्की सूरत है, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा ही रंग दिखेगा कि अल्लाह के नबी की जो मुखालफतें हो रही थी। वकालल्लज़ीन कफरू, और काफिरों ने कहा कि ये तो बस खुद इसी का घड़ा घड़ाया हुआ या जादू है, और जिस पर और लोगों ने भी इसकी मदद की है। दरअसल ये काफिर बड़े ही जुल्म और सरतासर झूठ के मुर्तकिब हुए। और ये भी कहा गया ये तो अगलों के किस्से हैं जो सुबह शाम इसके सामने पढ़े जाते हैं। कह दीजिए कि इसे तो इस अल्लाह ने उतारा है जो आसमानों जमीन की तमाम पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। और उन्होंने कहा ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वो भी इसके साथ होकर डराने वाला बन जाता, या इसके पास कोई खजाना ही डाल दिया जाता, या इसका कोई बाग ही होता जिसमें से ये खाता। और इन जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लिए हो जिस पर जादू कर दिया गया। ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी निस्बत कैसी कैसी बातें बनाते हैं, बस जिससे खुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह राह रास्त पर आ नहीं सकते। तबारक अल्लज़ीन शाह जाला लका खैरम मिन ज़ालिक, अल्लाह तो ऐसा बाबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात अनायत फरमा दे जो इनके कहे हुए बाग से बहुत ही बेहतर हो, जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हो, और आपको बहुत से पुख्ता महल भी दे दे। आयत नंबर 4 से 10, इसका टॉपिक लिखें नबी को परखने के झूठे मेयार। हर दौर में लोगों की यही सोच होती है कि दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एक माफोकुल फितरत मखलूक होंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, और इनके साथ सोने चांदी के महल्लात होंगे और जेवरात होंगे, क्योंकि अल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत करता है। जो लोग मादा में फंसते हैं वो मादा ही के जरिए से हक को पहचानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला से लोगों को कहते हैं कि ये जो बागात आपके लिए सोचते हैं हम तो आपको उससे भी अच्छे दे सकते हैं। एक मौके पे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लम को बोरिए पे लेटे हुए देखा, और आपके जिस्म पे वो चटाई के जो निशान होते हैं वो पड़े देखे, तो बहुत ही दुखी हुए कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम, दुनिया के बादशाह तो इतने नरम बिस्तरों पे सोएं और आप इतने सख्त बिस्तर पे, हमें इजाजत दीजिए कि हम आपके लिए नरम गद्दा बना दें। तो आपने फरमाया कि उमर क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ये चीज़ हमारे लिए आखिरत में पैदा करे? यानी आपने अपनी मर्जी से ऐसी आसान और सादा जिंदगी को पसंद किया, लेकिन वो लोग जो दुनिया की कामयाबी को पाने वाले, वो दीनदार की भी यही कामयाबी देखते हैं कि इसके साथ दुनिया की कितनी रौनकें और कितने मेले हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अगली आयतों में कुछ ऐसे मनाजर दिखाए कि जिसको सुनने के बाद हर बंदा ये फैसला कर सकता है कि दुनिया में ऐश और आराम में रहना नाफरमानियों के साथ और कल आखिरत में ऐसा अंजाम होने लगे, ये बेहतर है या जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार कर उसकी जन्नतों को पाना। अगली आयतों को देखते हैं। बल कज़्ज़बू बिस्साती, बात यह है कि ये लोग क्यामत को झूठ समझते हैं और क्यामत के झुठलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जब वो इन्हें दूर से देखेगी तो ये इसका गुस्से से बिफरना और धाड़ना सुनेंगे, और जब ये जहन्नुम की किसी तंग जगह में मुश्कें कस कर फेंक दिए जाएंगे तो वहां अपने लिए मौत ही मौत को पुकारेंगे। वाहिदा, इनसे कहा जाएगा आज एक ही मौत को मत पुकारो बल्कि बहुत सारी मौतों को पुकारो, यानी आनी तो एक भी नहीं, जितनी मर्जी मौतें मांग लो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। आप कह दीजिए, क्या ये बेहतर है या वो हमेशगी वाली जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया, जो इनका बदला है और इनके लौटने की असली जगह है। लहुम फीहा मा यशाउन, वो जो चाहेंगे इनके लिए वहाँ मौजूद होगा हमेशा रहने वाले, ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिले तल्ब है। और जिस दिन अल्लाह तला इन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें ये पूछते रहे इनको जमा करके पूछेगा कि क्या मेरे बंदों को तुमने गुमराह किया या ये खुद ही राह से गुम हो गए, वो जवाब देंगे, पाक है वो जात, खुद हमें ये जेबा न था कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज बनाते, बात ये है कि तूने इन्हें और इनके बाप दादाओं को आसूदगियां दी, यहाँ तक कि वो नसीहत को भुला बैठे, ये लोग थे ही हलाक होने वाले। तो उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुटलाया, अब ना तो तुम में अजाबों के फेरने की ताकत है ना मदद करने की, तुम में से जिस जिसने जुल्म किया हम इसे बड़ा अजाब चखाएंगे। हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे सबके सब खाना भी खाते थे और बाजारों में भी चलते फिरते थे, और हमने तुम में से हर एक को एक दूसरे की आजमाइश का जरिया बना दिया। अतस्विरून, क्या तुम सब्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। ये थी आयत नंबर 11 से 20, 11 से 20। इसका उन्वान है, क्या तुम सब्र करोगे? बात तो पीछे अंबिया कराम और उनकी कौमों के साथ थी, लेकिन हकीकत यह है कि यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि दुनिया में इंसान दूसरों की वजह से आजमाया जाता है। आप चाहें तो हाईलाइट कर लीजिए बिल्कुल आखिरी हिस्सा, वजल नाबा दकुमली बा दिन फितना। ये बाज बाज रिश्ते भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम एक इज्तमाई जिंदगी की दावत देता है। एक शख्स अकेला रहता है, कट कट के रहता है, जुदा रहता है, उसको बहुत ज्यादा सदमे नहीं सहने पड़ते, वो मनमानी करने के लिए तैयार, वो कुछ भी करे लोग उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन जो ही आप इज्तमाई जिंदगी की तरफ आते हैं ना, तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। ऐसे वक्त में कभी कभी आपको कोई ऐसी बात भी सुननी पड़ती है जिससे आपका दिल टूटे। इस्लाम क्या पसंद करता है? कटने की बजाय, टूटने की बजाय साथ जुड़े रहो और सब्र कर लो। एक मौके पे एक बहू ने मेरे साथ अपनी सास का कोई अमल होगा शेयर किया। होते हैं कुछ नफसियाती प्रॉब्लम, कुछ तो बहुएं महसूस ज्यादा करती हैं और कुछ बहु सासों को समझ नहीं होती, कुछ उम्र का भी तकाजा होता है और सब है। तो यही आयत मैंने उनको दिखाई थी कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हकीकत दे दी कि वजाल ना बादकुम लिबादिन फितना। बस लोग कहते हैं फलां को तो मुझसे है ही चिड़, बस मुझे देख के उनका मूड खराब हो जाता है, या मैं तो उनकी इतनी भी खिदमत करती हूँ मेरे से वो मोहब्बत नहीं, फलां दूसरी जो बात में आई है वो कुछ भी नहीं करती उससे भी मोहब्बत है। ये सारे मसलों का एक ही जवाब है कि अतस्बिरून, 4 दिन की दुनिया सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह वकाना रब्बुका बसीरा। क्या ये बात नहीं बताई जा रही? अगर कोई तुम्हें चोट देता भी, अगर किसी की बात से तुम्हारा दिल दुखता भी है, तो ये याद रखो कि अल्लाह को तुम्हारे हाल की खबर है। मत बताओ शौहर को, उसका दिल खट्टा ना करो उसकी माँ से, मत बताओ बहनों को, ना बताओ भाइयों को, बस अल्लाह के लिए सब्र कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां कर देगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।